अरमान के इमोशंस। अरमान को ये काम करना बेहद अजीब सा लग रहा। उसके दिल की धड़कन बेकाबू होकर थक थक किए जा रही थी। अब आगे अरमान ने जैसे तैसे अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए अपनी आंखें बंद ली, क्योंकि वो अपने मन को भटकने से रोकना चाहता था। इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान आस्था के कपड़े बदलने में लगा दिया था। फिलहाल एयर कंडीशनर कमरे में होने के बावजूद अरमान के माथे पर पसीना निकलने लगा था। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ये मुझे क्या हो रहा है? आज तक मैंने कितने ही लोगों को अपने ही हाथों से बिना किसी हिचकिचाहट के मौत के घाट उतार दिया। कितनों को चाकू से गोदा और स्क्रूड्राइवर से मारा, लेकिन कभी मेरे हाथ नहीं कांपे। फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता? अरमान के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन वो किसी भी हाल में आस्था के कपड़े बदलना चाहता था। वो उसे बीमार पड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, क्योंकि अगर आस्था बीमार पड़ गई तो उसके बेटे की देखभाल कौन करेगा? ये सोचकर ही उसका दिल बैठने लगा। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने जैसे तैसे आस्था के कपड़े बदल दिए थे। उसके बाद उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जैसे कोई बहुत बड़ा और थका देने वाला काम किया हो। अगले ही पल जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की और आस्था को देखा तो वो एकदम से हैरत में पड़ गया, क्योंकि जल्दबाजी करने के चक्कर में उसने अंधेरे में आस्था को उल्टे सीधे कपड़े पहना दिए थे और अब उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसे अब खुद से ही इरिटेशन होने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए वहां की हवा जम गई हो। उसने अपना माथा मसलते हुए थके हुए एक्सप्रेशन से सोचा, क्या मैं इसके कपड़े फिर से चेंज कर दूं? अपने ख्यालों से बाहर आते ही वो एकदम से हड़बड़ा गया। उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं पूरी रात इस लड़की के साथ लगा रहूंगा? नहीं, ये लड़की तो यही चाहती है कि मैं इसके करीब आऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं अरमान को ये भी डर था कि अगर अगली सुबह आस्था को कुछ याद रहा तो न जाने सुबह सुबह वो क्या बवाल करेंगी। इतना सोचते ही उसने अपना इरादा बदल दिया और वो बेड पर आ गया। अरमान ने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आस्था, जो अब भी नशे के असर में थी, नींद में ही धीरे धीरे सरकते हुए अरमान के और करीब आ गई। उसने पीछे से आकर अरमान को कसकर पकड़ लिया और नींद में ही अरमान के गले से लग गई। उसे आदत थी अरमान को टेडी बेयर की तरह पकड़कर सोने की, और आज भी वो वही कर रही थी। अरमान, जो कि अभी तक ठीक से गहरी नींद में नहीं सोया था, वो एक बार फिर आस्था की सांसों की खुशबू महसूस कर बैठा और अगले ही पल उसका सारा गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। कब उसके हाथ ऑटोमेटिकली आस्था की कमर पर चले गए उसे खुद भी पता नहीं चला। अरमान को महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल में कुछ हलचल सी मच गई है। उसे एक मीठी और तीखी अजीब सी फीलिंग होने लगी थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अरमान ने उस फीलिंग को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया था कि उसका दिल उसकी बात मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहा था। उसके दिल में एक खुशी और सुकून की लहर दौड़ने लगी थी। उसका रोम रोम इस कदर खुशी महसूस कर रहा था कि उसका शरीर कांपने लगा था। आस्था को बाहों में थामे हुए उसका दिल अब भी उसके इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो आस्था के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपने उमड़ते हुए जज्बातों को दबाने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार आस्था को देखते देखते वो भी गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह वहीं दूसरी ओर ध्रुव इस वक्त वंशिका के साथ था। आज वंशिका कुछ ज्यादा ही उदास और परेशान लग रही थी, क्योंकि वो अभी अभी प्रोफेसर साहब को देखकर आई थी, लेकिन प्रोफेसर साहब की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। ध्रुव ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, प्रोफेसर प्रशांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हम उनसे वापस एंटीडोट बनवा लेंगे। वंशिका इस बात पर रिएक्ट करते हुए बेचैनी से बोली, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अरमान भाई की यादें पूरी तरह से वापस आ सकें। बाबा के लिखे हुए सारे नोट्स और कोटेशंस मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि जब भी बाबा कोई नया फॉर्मूला ट्राई करते थे तो उसकी डिटेल्स मुझे मेल कर दिया करते थे। फिर थोड़ा रुककर आगे उसने अपनी बात जारी रखी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं यहीं सिंघानिया मेंशन के अंदर एक छोटी सी लैब बनाकर उसमें भी काम स्टार्ट कर दूं। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा के रूल्स को फॉलो करते हुए मैं एक फिर से वही एंटीडोट बना सकती हूँ, और वैसे प्रोफेसर प्रशांत का बनाया हुआ एंटीडोट हम तक पहुँचने से पहले चोरी हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि हमने जो एंटीडोट बनवाया था वो बिल्कुल सही बना था। ध्रुव को वंशिका की बातों में कहीं ना कहीं दम नजर आ रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और वंशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे सीने से लगाते हुए बोला, तुम जानती हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मेरी जिंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत हो गई है। तुम मेरे साथ साथ मेरे परिवार के बारे में भी कितना सोचती हो। इतना कहते ही ध्रुव वंशिका को बेहद प्यार जताने लगा। फिर धीरे से उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, तुम तो जानती ही हो माँ पापा की मौत के बाद मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। मेरी जिंदगी में कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। अरमान भाई, सुमित भाई, आकाश भाई और सबसे ज्यादा दादाजी ने मुझे प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने मुझे आत्मसम्मान से जीना सिखाया और आहान, वो तो मेरा पक्का जिगरी दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगता था जैसे एक अनाथ को फिर से नई जिंदगी मिल गई हो, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। भले ही मेरे माँ पापा मरने से पहले मेरे लिए कितना ही धन दौलत छोड़ गए हों, लेकिन परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग मेरे अपने हैं। और तुम नहीं जानती, मैंने इन्हीं लोगों को अपना परिवार बना लिया है और उनके साथ साथ अब मेरे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम भी हो। तुम मेरी जिंदगी हो वंशिका। ये कहते हुए उसने एक बार फिर अपने प्यार का इजहार वंशिका से कर दिया। जैसे ही ध्रुव के शब्द खत्म हुए, वैसे ही वंशिका की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी पहले किसी अपने की कमी थी। अपने भाई की मौत के बाद तो वंशिका की जिंदगी में कोई बचा ही नहीं था, बस प्रोफेसर प्रशांत ही थे जिनसे वंशिका बहुत अटैच थी, लेकिन उनकी गंभीर हालत देखकर वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। फिलहाल वंशिका ने सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस को संभाला और अपना दर्द छुपाते हुए वो अपना हाथ जोड़ के कंधे पर रखती हैं और उससे प्यार से कहती हैं, मेरी जिंदगी भी अब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है ध्रुव। ये कहकर वो कसकर ध्रुव के गले लग गई। फिर वो दोनों ने एक भावुक पल साथ में शेयर किया, दोनों की ही आंखें भर आई थी। वहीं दूसरी ओर रौनक और आहान अपनी प्रिंसेस को गोद में लिए बालकनी के पास खड़े थे। रौनक आहान से मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं कल पंडित जी हमारी बेटी के नाम का पहला अक्षर कौन सा देंगे, देखना हम अपनी बेटी का बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे। इतना कहते ही उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहीं ना कहीं वो दोनों ही कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कमरे में आकाश ने रश्मि को एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट किया। उसने रश्मि से कहा, गोद भराई में तो नानी माँ हमें आने नहीं देगी, लेकिन मैं भला पीछे कैसे रह सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही गिफ्ट खरीद लिया है। आई होप कि तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। इतना कहते ही उसने रश्मि को देखा जो इस वक्त उसे ही आश्चर्य से देख रही थी।
अचानक रश्मि की आंखें भर आती है। उसने आकाश को गले लगाते हुए कहा, सचमुच ये दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है, और तुम गोद भराई की रस्म में क्यों नहीं आ सकते? नानी ने कहा है कि पति वहां आ सकते हैं, बस गिफ्ट देकर चले जाएं, और तुम सबके सामने मुझे गिफ्ट दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस पर आकाश ने अपना सर अफसोस में हिलाया और उसे प्यार से समझाया, वो एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां आ पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी फंक्शन अधूरा रहे, इसलिए मैं पहले ही गिफ्ट देकर जा रहा हूँ। आकाश का प्यार पाकर रश्मि इमोशनल हो गई थी, वो उसे गले लगाकर खड़ी रही। आकाश ने बड़े प्यार से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, देखना हमारी बेटी भी बहुत प्यारी होगी, बिल्कुल रौनक और आहान की बेटी जैसी। आकाश के शब्द रश्मि के लिए किसी धमाके की तरह थे, जिसे सुनकर वो उसे आंखें दिखाते हुए एकदम से बोली, अगर तुमने बेटा बेटी शुरू किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद है ना, आहान और रौनक के बीच इस वजह से कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी और उनके रिश्ते में भी दरार आ गई थी। मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते के बीच भी इस तरह की कोई गलतफहमी रहे, समझे तुम? मुझे पता है बेटा हो या बेटी, तुम्हें या मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी तुमने बेटा बेटी का रट लगाकर मुझे इनसिक्योर किया और मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो। इससे पहले रश्मि अपने शब्दों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही आकाश ने तुरंत अपने हाथ उसके होठों पर ढंग दिए थे और वो लगभग उसे डांटते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने ऐसा कभी सोचा भी तो, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी सांसों की धड़कन में बस चुकी हो रश्मि, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहते ही वो रश्मि का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखें भले ही दाग थीं, मगर उनमें कुछ इमोशंस नजर आ रहे थे, जिसे देखकर रश्मि की आंखें भर आईं और उसने कसकर आकाश को गले से लगा लिया। आकाश ने भी पूरे दिल से उसका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर हमारे आखिरी कपल सुमित और राधिका एक दूसरे की बाहों में सुकून की अवस्था में लेटे हुए थे। जब से रश्मि ने उन्हें ये खुशखबरी दी थी कि राधिका भी माँ बन सकती है, तब से वे दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। वे बस जल्द से जल्द इस बात को कन्फर्म करना चाहते थे कि वे भी पेरेंट्स बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुमित के अंदर पिता बनने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, लेकिन राधिका के मेडिकल कंडीशन की वजह से उसने अपने दिल की बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वो कभी खुलकर ये बात उससे नहीं कह पाया था कि वो भी पिता बनना चाहता है, लेकिन आज उसने दिल खोलकर अपने मन की बात राधिका से कह दी। मैं कब से चाहता हूँ कि मेरी भी कोई औलाद हो, तुम देखना जब हमारा बच्चा होगा तब मैं अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर हर जगह घुमाऊंगा। मैं अपनी बेटी हो या बेटा, मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी लाकर दूंगा। इतना कहते कहते वो एक्साइटेड हो जाता है। सुमित का रिएक्शन देखकर राधिका अगले ही पल चौंक गई और वो उसे आंखें दिखाते हुए एकदम से बोली, अगर तुम पिता बनना चाहते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इतना ज्यादा नाटक क्यों किया और तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? इतना कहते ही वो गुस्से में मुंह बना लेती है। राधिका की आवाज में शिकायत भांपते हुए सुमित ने तुरंत आगे बढ़कर अपने होठों से राधिका के माथे को चूमते हुए कहा, क्योंकि मैं एक नई जिंदगी के लिए तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए सुमित की आंखों में एक जुनून, एक अलग ही कशिश थी। जैसे राधिका ने सुमित के ये शब्द सुने, वैसे ही राधिका पूरी तरह से सुमित की बाहों में अपना सिर छुपा लेती है और सिसकते हुए बोली, आई लव यू सो मच। तब सुमित ने उसे प्यार से अपनी ओर करीब खींच लिया। एक बार फिर दोनों की प्यार भरी आवाजें उस कमरे में गूंज उठी। फिलहाल प्यार भरी रात के बाद अगली सुबह हो चुकी थी। इस वक्त नानी माँ ने एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन अभिमान जी का चेहरा आज थोड़ा बुझा हुआ सा लग रहा था। उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि जिस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार था, किस तरह से उन्होंने अपनी निगरानी में वसुंधरा से सारा काम करवाया गया था और सारी तैयारियां करवाई थी। आज भी उसी तरह सभी लोग सिंघानिया मेंशन में नहीं बल्कि रघुवंशी मेंशन में रश्मि की गोद भराई के साथ साथ बाकी रस्में पूरी करना चाहते थे। बच्चे का नामकरण सुबह सुबह सिंघानिया मेंशन में ही होना था। इसी वजह से आस्था ने नानी माँ से कहा था कि दोपहर के 3 बजे से पहले पहले सारे काम निपटा लिए जाएं, ताकि रश्मि की गोद भराई और बच्चों के नामकरण की रस्में समय पर पूरी हो सकें और उसके बाद वो बेफिक्र होकर डाकविला में जा सकें। इसीलिए आज सुबह से ही सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और साजिश भी चल रही थी। संजना ने ठान लिया था कि वो आज के आज ही आस्था को खत्म कर देगी, इसीलिए उसने एक बार फिर अपने मोहरे यानी वसुंधरा का इस्तेमाल किया। संजना ने वसुंधरा को एक स्क्रिप्ट देते हुए कहा, तुम ये सारी लाइंस आस्था को फोन पर बोलोगी और उसे यहाँ बुलाओगी। बस एक बार तुम उसे यहाँ बुला लो, उसके बाद फिर मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी। वसुंधरा भरी हुई आंखों से वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उसमें लिखा था,